आज का क्लास है प्रातः क्लास 7-8-65 की वाणी। रिकॉर्ड चला है आज के इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वो दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें, अब ईश्वरीय प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में तो कितना सच्चा प्यार था और अभी है झूठा प्यार। कैसे सच्चा प्यार किसे कहा जाता है और झूठा प्यार किसे कहा जाता है? हैं?
सच्चा प्यार झूठे करते हैं।
सच्चा माना ऊंचा है और झूठा माना नीचा है। शेष इंद्रियां ऊंची होती हैं कि भ्रष्ट इंद्रियां ऊंची होती हैं? शेष इंद्रियों का जो प्यार होता है वो ऊंचा प्यार है, है? और जो भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार है जानवरों वाला, वो है नीचा प्यार। क्यों है नीचा? इसलिए नीचा है कि वो मिट्टी से प्यार करते हैं जानवर, है? और मनुष्य जो है वो मननात मनुष्य कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने से मनुष्य कहा जाता है। कोई काम करना होता है तो उसे करने से पहले आदमी सोच विचार करता है, मनन चिंतन मंथन करता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे हमको फायदा होगा, दूसरे को फायदा होगा, नुकसान होगा, दुख होगा, सुख होगा, तो सोच विचार करता है फिर काम करता है। तो सोच विचार के जो काम किया जाता है उसमें ना अपने को दुख होता है ना दूसरे को दुख होता है। तो बताया कि जो मिट्टी से प्यार किया जाता है वो है झूठा प्यार। ये शरीर काय से बना है? मिट्टी से ही तो बना है। पांच तत्वों से बना है, पांच तत्वों में मुख्य तो मिट्टी का ही तत्व है। तो पांच तत्वों के पुतले से प्यार करना वो हो गया झूठा प्यार। बाप आकर के सिखाते हैं। कौन सा बाप? जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, है कौन सी बिंदु बिंदु? जो प्रकृति के मध्य में आज भी माताएं बिंदु लगाती है, वो ही आत्मा बिंदु है। उसी बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, वो आकर के सच्चा प्यार सिखाते हैं कि तुम आत्मा बिंदु हो, है रूहानी प्यार करो, फिर जिस्मानी प्यार छोड़ दो। देवताएं रूहानी प्यार करते थे, सती को त्रेता में देवताएं तो थे ना, रामकृष्ण की दुनिया में जहाँ 16 कला संपूर्ण जीवन था तो सब सुखी थे, और आज की दुनिया में सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते, दूसरों को आत्मा के रूप में नहीं देखते, देह के रूप में देखते। अगर ऋषियों महर्षियों ने आज से 1000-2000 साल पहले ये परंपरा बना दी कि आत्म की स्थिति में देखने के लिए टीका लगाओ, बिंदी लगाओ, तो वो सिर्फ परंपरा मात्र रह गई है। ये परंपरा निभाने के लिए कि बिंदी लगाना है, टीका लगा, लोगों ये भूल गए क्या कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, हम आत्मा स्टार हैं, हैं? और ये स्टार जो है प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा, इसी में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए। भारत में कितना सच्चा प्यार था, कब? रामकृष्ण के जमाने में, सत्य को त्रेता में कितना सच्चा प्यार था, जब भारत सच्चखंड था तब सच्चा प्यार था, और अभी भारत झूठ खंड है। सच्चखंड किसने बनाया था? हैं? कोई झूठा थोड़ा ही सच्चखंड बनाएगा। सच्चखंड बनाने वाला भी कोई सच्चा बादशाह होगा, जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। भंगी होगा तो क्या बनाएगा? भंगी बनाएगा। ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण बनाएगा। तो सच्चखंड किसने बनाया है? एक सच्चा गॉड फादर है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सच्चा पिता कहा जाता है, उसने सच्चखंड बनाया था। सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने बनाया था क्या? आज के गुरु जो है वो तो गुरु तो है, लेकिन ढेर सारी बातें मनमत की भी लगा देते हैं, शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ है और इंटरप्रिटेशन में वो अपनी कुछ न कुछ बातें मिक्स कर देते हैं। सतगुरु वास्तव में एक शिवबा भाई है, वो जो भी बताता है शास्त्रों का भी इंटरप्रिटेशन करेगा, व्याख्या करेगा, तो वो सच्ची सच्ची बातें बताएगा जिनका कोई शान ही नहीं होता है। तो वो सतगुरु भी है, सत्य टीचर भी है, हैं एक एक बात के हिज्जे हिज्जे करके बताता है। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? मूल प्रश्न बाबा ने ये किया, अभी तुम किसके आगे बैठे हो? मना बुद्धि से किसके सन्मुख बैठे हो? तुम्हारी बुद्धि अभी किसके सामने आई है? सत्य बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है उसके सामने बैठे हो क्या? सच्चा सुख देने वाला है, अभी दिया नहीं है। सच्चा सुख देने वाला है, अभी सच्चा सुख दिया नहीं है, सिखा रहा है। सच्चा प्यार सिखलाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। क्या कहा? हम उनके सन्मुख बैठे हैं। क्या बात हो गई है? उनके सन्मुख बैठे हैं, उनके करके दूर क्यों कर दिया है? हम उनके सन्मुख बैठे हैं। 65 की वाणी है, 65 में ब्रह्मा के तंत्र चलाई, उस समय कह रहे हैं हम उनके सन्मुख बैठे हैं। किन के सन्मुख बैठे? ये कौन बोल रहा है? हैं? शिव बोल रहे हैं? नहीं, ब्रह्मा बाबा ने इंटरफियर करके बोला है। बीच में ब्रह्मा बाबा बोल पड़े हम उनके सन्मुख बैठे हैं। माने ब्रह्मा बाबा जो है अपने संगी साथी बच्चों से बता रहे हैं कि हम उन शिव बाबा के सन्मुख बैठे हुए हैं। झूठ खंडे में तो सब झूठ ही झूठ है, गया भी जाता है। सत्य का संग तारे क्या करे? तारे माना सत्य का संग होता है वो पार ले जाता है, और झूठ का संग होता है वो डुबो देता है। ये खासियत है सत्य के संग की और झूठ के संग। तो सत्य एक है, सत्य अनेक नहीं हो सकते। एक कैसे? अच्छा, कथाएं एक हैं कि कथाएं अनेक है? कथा एक ही है। हाँ, भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं ना कि एक सत्य नारायणी है जिसकी सत्य कथा होती है, हैं? सत्य के नारायण की कथा आज भी घर घर में गाई जाती है, लेकिन वो जो आज पंडित जी लोग गाते हैं वो लीलावती कलावती लकड़हारी की कथा गाए देते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि सत्यनारायण की सच्ची कथा क्या है, क्योंकि सत्यनारायण तो 16 कला संपूर्ण थे, हैं? तो 16 कला संपूर्ण है जो सत्य के आज में सत्यनारायण थे, उनको सब भूल गए हैं, किसी की हिस्ट्री का पता नहीं है। शिव बाबा आकर के बताते हैं कि सत्य एक ही है, और उस एक ही सत्य साईं बाबा एक सत्यनारायण में प्रवेश करके इस सृष्टि पर आता है, सच खंड की स्थापना करता है। असत अनेक है क्या? उसके बाद जो भी आए, सेकंड नारायण आया, थर्ड नारायण आया, आठवां तक नारायण आया, जो भी आठ नारायण, वो सब नंबर वार झूठे हो जाते हैं। क्यों झूठे हो गए? आए तो वो भी सत्ययुग में, वो झूठे क्यों? उस समय तो सच्चे थे, त्रेता तक भी सच्चे रहे, फिर जहाँ द्वापर शुरू हुआ और सेकंड नारायण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो झूठा हुआ ना। जो सच्चा होगा वो कन्वर्ट होगा क्या? कभी नहीं कन्वर्ट होगा। अच्छा, तो तुम देखते हो अनेक गुरु लोग हैं, सब झूठ बोलने वाले, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं, चलते चलते ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। सारी दुनिया में ईश्वर के बारे में जो कुछ सुनाते हैं वो सब झूठ ही झूठ सुनाते हैं। किसके बारे में? ईश्वर के बारे में जो सुनाते हैं वो सब झूठ ही झूठ सुनाते हैं। भक्त भी झूठे हैं, सच्चे भक्त थोड़े ही हैं। सच्चे भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया ही झूठी है। द्वापर युग के आज में फिर भी सत्व प्रधान भक्ति थी, तो भक्त भी सच्चे थे। तो शास्त्र भी उन्होंने सच्चे रचे थे। अभी शास्त्र भी झूठे हो गए और भक्त भी सब झूठे। भक्त कोई सच्चे थोड़े ही है। सत्य बाबा एक ही है जिसके संग से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। क्या कहा है? किसके संग से स्वर्ग के मालिक बनते हो है? एक सत्य बाबा के संग के रंग से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही सच्चे शिव बाबा की भक्ति होती है। इसको ही सच्ची अभिविचारी भक्ति कहा जाता है। तुम वो सच्ची भक्ति करके आए हो क्या? तुम बच्चों की बुद्धि में जो ये बातें बाबा की बैठ रही हैं, वो ही बच्चे सच्ची भक्ति करके आए हैं। बाप ही बैठकर सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो पहले पहले अभिविचारी भक्ति थी, सिर्फ शिव बाबा की भक्ति करते थे और वो भी भक्ति सच्ची थी। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं। क्या कहा? जितनी जिसने सच्ची भक्ति की अभिविचारी, उतना ही अभिविचारी सच्चा ज्ञान उठाता है। और जिसने जितनी जास्ती झूठी भक्ति की है, व्यभिचारी भक्ति की, उतना ही वो दूसरे दूसरों की बातों में फंस जाता है और एक शिव बाबा की बातों को छोड़ देता है। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है और झूठा ज्ञान जो सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क हो जाता है। ये क्या होता है बेड़ा है? बेड़ा पार होता है, बेड़ा गर्क होता है। गर्क माना डूब जाता है, बेड़ा माना जहाज। सच्चा ज्ञान सुनते हैं तो हमारा शरीर रूपी जो बेड़ा है वो इस विषय वैतरण से पार स्वर्ग में पहुंच जाता है। और झूठा ज्ञान सुनते सुनते गुरुओं का यह शरीर रूपी बेड़ा विषय वैतरण नदी में ही डूब के खत्म हो जाता है। माना इस शरीर से फिर हम स्वर्ग में पहुंचने वाले नहीं है। तो जब बेड़ा गर्क हो जाता है उसको अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान सच्चा बाप ही सुनाते हैं, अज्ञान झूठे सुनाते हैं। परंतु वो तो है रंग। मूल बात होती है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाना और पढ़ना। अब वो लोग वास्तव में हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते ही नहीं है। तुम बच्चे अब सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो तो ये टीचर भी सच्चा हुआ। और बाबा तो सच्चा है ही, वो सब है झूठे। सचगुण भी सच्चा बाप कहेंगे क्योंकि वहाँ तो झूठ होता ही नहीं। क्या सतयुग में भी 16 कला संपूर्ण सतयुग जब होता है तो वहाँ बाप भी जो लौकिक बाप होते हैं वो भी सच्चे ही बाप हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते हैं। सतयुग त्रेता में झूठ होता नहीं है। झूठ तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं। कब आते हैं 5 विकार? जब द्वैत द्वापुर दो दो बातें शुरू हो जाती है। जब तक एक शिव बाबा की मत पर चलते हैं तो एक मत रहता है। एक मत से एक दुनिया, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत चलता है तो सब सुखी रहते हैं। और जहाँ से द्वैत शुरू होता है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट दूसरे दूसरे धर्म गुरु आते हैं, तभी से दुनिया का पतन शुरू हो जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हम बेहद के निराकार बाप के सामने बैठे हैं। ये बाबा भी कहता है मैं भी उनके सामने बैठा हूँ, उनको याद करता हूँ। ये है बाबा कौन, किसके लिए बोला? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि याद करने वाला तो ब्रह्मा बाबा ही है। शिव बाबा तो कोई याद करने की दरकार है ही नहीं। तो यह बाबा भी कहता है मैं भी उनके सामने बैठा हूँ। ये उन्होंने किसके लिए बोल दिया उनके सामने बैठा हूँ? किसके लिए सामने बैठा हूँ? ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था? वो तो प्रवेश ही था, उसमें सामने कहाँ था? बाजू में ही बैठा हुआ है। ये की आज में जो व्यक्तित्व था ना, उसकी तरफ बाबा की बुद्धि चली गई। हाँ तो बताया पीयू जिसको कहा जाता था हाँ? तो बाबा ने बोला ये बाबा भी कहता है मैं भी उनके सामने बैठा हूँ, माने बुद्धि से उनके सामने बैठा हूँ, उनको याद करता हूँ, उनको याद करता हूँ। अच्छा घड़ी घड़ी याद करता हूँ? बाबा का बच्चा हूँ ना, तुमको तो फिर भी साकार को छोड़ उनको याद करना है। क्या कहा? मैं भी उनको याद करता हूँ, फिर भी तुमको तो पास्ट की बात हो गई, और तुमको फिर भी उस साकार को याद उनको याद करना है, किस साकार को छोड़ना है, किस साकार को? तुमको तो फिर भी इस साकार को छोड़कर उनको याद करना है, किस साकार को छोड़कर? ब्रह्मा बाबा को छोड़कर, क्योंकि हम तो जो विनाशी चीज थोड़े याद करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तो तुमको थोड़ी अटक पड़ती है, मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नजर इस पर जाती है, मेरी नजर किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, ये क्यों कहा? तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, मारे मजबूरी है, और मुझे तो डायरेक्ट मिल गया, माना? माना बाबा की बुद्धि में भी, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी स्पष्ट नहीं है बात कि आगे चल करके कोई बाबा का पार्ट डिक्लेयर होना है, जिसके लिए बाबा ने बोला हुआ है कि जो आदि में था वो ही फिर अंत में भी आएगा। इनको साकार को उलांघना पड़ता है कि याद न पड़े। मेरे लिए तो एक ही है बाबा है, तुम्हारे सामने दो बैठे हैं, दो कौन कौन बैठे हैं तुम्हारे सामने? एक ब्रह्मा बाबा, एक शिव बाबा, तो तुम्हारे सामने तो दो बैठे, मेरे सामने एक है, उनका मैं बच्चा हूँ। क्या मैं बच्चा हूँ? वो मेरा बाबा है, तुम्हारे लिए दो है, माना एक छोटा बाबा और एक बड़ा बाबा। फिर भी मैं ऐसे बाप को निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए है एक ही, लेकिन फिर भी मैं उसको निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं याद कर सकता हूँ? है मैं निरंतर याद क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पीछे ये लफड़ा बहुत है, इतनी बड़ी बारात लगी हुई है, हैं? इतनी बड़ी बारात की परवरिश करनी है, चिंता लगी रहती है। पहले तो मेरे पास ढेर सारा पैसा था, अभी तो ये बारात खिलाते खिलाते सारा पैसा खत्म हो गया, इसकी परवरिश कैसे होगी? तो बुद्धि चलती रहती है, तो मेरे लिए थोड़ा याद करना कठिन है। याद नहीं कर सकता हूँ कि बाबा कहते हैं, बाबा तो कहते हैं तुम तो कर्मयोगी, कौन हठ योगी हो? आज की तो रस्म रिवाज ही अलग है, कोई कोई सन्यासी माताओं को भी छुड़वाते हैं कि तुम भी घर घाट छोड़ दो। वास्तव में माताओं को निवृत्ति मार्ग में नहीं लेना है। क्यों है? माताओं को निवृत्ति मार्ग में क्यों नहीं लेना चाहिए? अरे भाई लोग तो कहीं भी लगोटी लगा के बैठ जाएंगे, उनको क्या अंतर पड़ता है? माताओं के लिए तो थोड़े ही ये घर घाट और रोटी कपड़ा और मकान सब छोड़वाई देना चाहिए। माताओं को तो अपने घर व्यस्त में अपने बाल बच्चों के पास रहना ही चाहिए। तो अगर पति शरीर भी छोड़ देता है तो बच्चों के साथ रहे, तो वास्तव में माइयों को निवृत्ति मार्ग में नहीं लेना है, संघ में संन्यास कर लेती है। माता भी कोई कोई मुड़वाई लेती है, कौन है? कोई माता है जो घर घाट छोड़ेंगे तो माया उनका माता मुड़ ही लेगी, है? तो माता भी मुड़वाई लेती है। माथा उड़वाना माने कहते न, तो जाओ माथा मुड़वा ले जाके, क्या करे आए? माथा मुड़वा के आ गए, माने जो कुछ था तुम्हारी लटू ले सारा लुटा करके आ गए। तो बोला माथा भी मुड़वाई लेती है। वास्तव में ज्ञान तो एक है, और जितना भी मनुष्य गुरु ज्ञान सुनाते हैं, सन्यासी आदि ज्ञान सुनाते हैं, वो सब है अज्ञान। तो शास्त्रों का ज्ञान है, सागर तो वास्तव में एक ही है, वो ही सारी सृष्टि के आदि अंत का राज बताते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है। सत्य उत्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लिए, 84 जन्मों का हिसाब है तुम्हारी बुद्धि में और 84 का ही पूरा चक्कर है। क्या जो 83-82 या कम जन्म लेते हैं उनका पूरा चक्कर नहीं कहेंगे? कलयुग कांत आ गया, फिर आगे चलकर नया चक्कर फिरेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। सत्युग में कौन कौन थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। क्या जानते हो? सत्युग में कितनी जमीन थी, आज कलयुग की दुनिया में कितनी जमीन है, आज ज्यादा जमीन है या सत्युग में ज्यादा जमीन होगी? हैं? हाँ, सत्युग में तो जमीन थोड़ी हो गई, और आज तो आज की दुनिया में तो जनसंख्या ज्यादा है तो जमीन भी ज्यादा चाहिए। आज की तो बात छोड़ दो, और से 400-500 वर्ष पहले भी जमीन बहुत थोड़ी थी। ये उत्तरी अमेरिका, इतने बड़े बड़े धर्म महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया, ये तो 300-400-500 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में भी नहीं थे कि दुनिया में है या नहीं, क्योंकि ये समुन्द्र के अंदर समाये हुए थे। हैं? अभी जब बाबा आए तब बता रहे हैं ये बात, पहले सिर्फ भारत खंड में ही जमीन थी और दुनिया के किसी भी धर्म खंड में जमीन जमीन नहीं थी, भारत में ही निवास करते थे। तुम जानते हो सत्युग में सारी जमीन पर हम राज करते थे, अब तो टुकड़े टुकड़े हो गया है। वो कहेंगे हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी मत लो, है कौन कहेंगे? हैं? वो कहेंगे हमारी हद में ना आओ, हमारा पानी न पियो, कौन कहेंगे? अरे दुनिया में तो ये चक्कर चलता ही है अधिकार का, ये जमीन हमारी, वो जमीन तुम्हारी, ये हमारा वो तुम्हारा, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये अधिकार का झंझट चलता है, अधिकार का झगड़ा चलता रहता है। क्या तो हमारी हद में क्यों आ गए, हमारी हद में नहीं आना, तुम वहाँ क्यों पहुँच गए, उधर नहीं जाओ इधर आओ, तो ये लड़ाई झगड़े जो है वो उसकी शूटिंग भी ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ती है। कहते हैं वो कहेंगे हमारी हद में ना आओ, हमारा पानी न लियो। क्या तथाकथित ब्रह्म कुमारियाँ क्या कहती हैं, हमारी मुरली क्यों पड़ते हैं? मुरली माना ज्ञान जल है, हमारा पानी क्यों पीते हो? तो अपना पानी अपने आप कुआ बनाओ, अपना आप निकालो। अच्छा हमारा पानी ले लियो, बाप तो बेहद का मालिक है, तुम्हारे हद का मालिक है क्या? हैं? तुमने जो चटपुजिया ज्ञान निकाला है, बाबा का ज्ञान तो बेहद का है, कोई हद का ज्ञान थोड़ा ही है। तो बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, हैं? जो तुमको ज्ञान मिला हुआ है, जो तुम्हें पानी, जिस पानी को तुम्हें अधिकार मिल गया है, या जमीन के जिस टुकड़े के ऊपर तुम्हारा अधिकार हो गया है, जमीन किसे कहा जाता है? हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में जमीन क्या है? अरे कन्याएं, माताएं, धरणी, यही जमीन है। तो बाबा कहते हैं अब तो ये जमीन और पानी का चक्कर छोड़ दो। क्या जमीन और पानी का चक्कर छोड़ दो कि हम इतने जमीन के स्वामी हैं, तुम इतने जमीन, वो उतने जमीन के स्वामी हैं, ये सब छोड़ दो, क्योंकि दुनिया खलास खलास होने वाली है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, किसी में तुम्हारा कल्याण है और किसी बात में कल्याण होने वाला नहीं है। और ये बात यह बाबा नहीं कहते हैं। क्या कहा है? मुझे याद करो, यह बात यह बाबा नहीं कहते हैं। कौन बाबा? हैं? ब्रह्मा बाबा नहीं, यह बाबा नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो, हैं? और ये पानी और जमीन का चक्कर छोड़ दो, ये कौन बाबा नहीं कहते हैं? ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहते हैं, क्योंकि वो तो गोती जमीन को संभाले बैठे, इतनी कन्या माताओं को संभाले बैठे, इसलिए वो कैसे कहेंगे? तो ये बेहद का बाबा कहते हैं कि अब ये सब अधिकार के झगड़े छोड़ दो, इन द्वारा तुम आत्माओं को बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो तब उस मुझे याद करोगे तो तुम कभी रोगी और बीमार नहीं करोगे। अगर ये जमीन जायदाद और पानी का चक्कर याद करते रहोगे तो जैसों को याद करोगे वैसे ही बनते रहोगे। क्यों? क्योंकि धरणी वो तो एक तरह से मिट्टी होती है, पानी वो भी पांच तत्वों का एक अंश है, पांच तत्वों में से एक तत्व है। ये पांच तत्वों को याद करने से बुद्धि कैसी बनेगी? जड़त्वमयी बन जाएगी। क्या? पांच तत्वों को याद करने से बुद्धि जड़मयी बनेगी, और जड़त्व को याद करोगे तो बीमार दुखी रोगी परेशान होते रहोगे। आत्मा को याद करोगे, आत्मा के बाप परमात्मा को याद करोगे तो आत्मा को शक्ति स्वतः मिलती है। 7-8-65 की वाणी का दूसरा पेज। यहाँ तो बाप बच्चों को समझाते हैं, वो बाप तो खुद मर जाते हैं और कितना दुखी हो जाते हैं। शरीर निर्वाह से सर्विस करनी पड़े, ये है ही दुख की दुनिया। बाप तो तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। अरे कोई तकलीफ नहीं? कितने साल हो गए, 65-68 साल होने जा रहे हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है, है? अगर जैसे बाबा चलाते हैं वैसे ही चलते रहे तो कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, सहज राजयोग है। सिर्फ कहते हैं याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षों को याद करते रहो। बच्चा जानता है हमको बाप का वर्षा मिलना है, तो भी अपना धंधा धोरी जरूर सीखते हैं। क्या कहा है? लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चा होता है जानता है कि बाप की मिल्कियत हमको मिलेगी, जानता है कि बाप की मिल्कियत मिलेगी, हम अपनी जिंदगी आराम से मिल्कियत में चला सकते हैं, फिर भी क्या करेगा? फिर भी अपना धंधा धोरी करेगा ना। तो ऐसे ही ये नहीं सोच के बैठ जाना है कि हमारा तो सर्वशक्तिमान बाप आया हुआ है और हमको तो हमारा विश्व का मालिक आया हुआ है तो हमें तो विश्व की मालिकाना मिल ही जाएगा, इसलिए कुछ नहीं करना है। नहीं, फिर भी ईश्वरीय सेवा करनी है। वर्षे के लिए बैठ नहीं जावेंगे। क्या कहा? ईश्वरीय वर्षे के लिए भी बैठने की दरकार नहीं है। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं, क्या कहा, वो वर्षे के लिए बैठते हैं। जो सिर्फ जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा लेते हैं वो सिर्फ वो ही धंधा करते हैं, और पेट का धंधा उन्हें करने की दरकार नहीं। क्यों नहीं करने की दरकार? पेट का धंधा इसलिए करने की दरकार नहीं कि बाप आकर के गारंटी देते हैं, बच्चे जो मेरी सेवा में लगे रहेंगे वो कभी भूख भूख नहीं मर सकते। तो बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं, क्या जन्म जन्मांतर राजाई घराने में जन्म लेंगे वो बैठते हैं। कितने बैठते हैं राजाई में जन्म लेने वाले? दुनियावी धंधा धोरी को छोड़ करके, दुनियावी घरग्रस्त व्यवहार को छोड़ करके, बेहद के घरग्रस्त व्यवहार को अपनाते हैं, ईश्वरीय सेवा में ही अपना जीवन लगाए देते हैं, वो कितने होते हैं संख्या में? है 16108। क्या ये शिव बाबा का राजा ही का वर्षा पाने वाला परिवार है? 16108। भले हर जन्म में राजा नहीं बनेंगे लेकिन राजा ही घराने में जन्म फिर भी लेते हैं, वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजा ही घर में जन्म मिलता है। क्या कहा? दुनिया में भी जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं तो उनको उनके घर में राजा ही घर में जन्म मिल जाता है। तो यहाँ भी बहुतों की सर्विस करेंगे, बहुत पुण्यात्मा बनेंगे, अच्छे अच्छे श्रीमत के अनुकूल काम करेंगे तो अनेक जन्म के लिए राजघराने में तुम्हारा जन्म होता रहेगा। तो राजा ही संभालनी पड़े ना, राजा ही घराने में जन्म होगा तो फिर वो राजा ही संभालनी पड़ेगी। वो तो राजा हैं, सब पतित हैं। जन्म दे करके पावन राजाओं के पास जन्म, हाँ पावन राजाओं के पास भेजता हूँ। लक्ष्मी नारायण के घर में वह सूर्यवंशियों की राजाई में तुमको जन्म लेना है, वहाँ दुख नहीं होता है, तुम सभी दुखों से छूट जाते हो। बाबा आए करके धीरज देते हैं। क्या, क्यों धीरज क्यों देते हैं? हाँ? क्योंकि सूर्यवंशी राजाई में आने वाले बहुत दुखी भी होते हैं आखिरी जन्म में आकर के। क्या, जिनको बहुत ज्यादा सुख मिलता है आखिरी जन्म में उनको बहुत ज्यादा दुख भी मिलता है। तो बाप आए धैर्य देते हैं, अभी अंतिम जन्म है, ये तो जन्म जन्मांतर से तुम्हारी ये हालत होती आई है। क्या हालत, गिरते ही आए हो, चौरासी जन्म लेते लेते तुम नीचे गिरते ही आए हो, दुख धाम में सुख कहाँ से आवेगा? ये धाम कौन सा है, दुख का धाम है, इसमें सुख कहाँ से आवेगा? यहाँ बहुत दुख है, बाकी सुख बहुत अल्पकाल का है। क्या, अल्पकाल के सुख के लिए आदमी कितना माथा मारता है। बाप कहते हैं ये अल्पकाल के सुख को उसको भी त्याग दो। भले बड़े बड़े आदमी हैं, परंतु उनको भी बहुत दुख होता है। दुनिया के बड़े बड़े आदमी, उनको और ज्यादा लसारा लगा हुआ है, ज्यादा ही चिंता लगी हुई है। बाकी सुख अल्पकाल का होता है। इस समय जो गरीब हैं वो सबसे अच्छे हैं। क्या कहा, इस दुनिया में जिसके पास कोई पदमान मर्तबा नहीं है वो ज्यादा सुखी है, है? जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है उनको संभालने में ही कहीं चोर न उठा ले जाए, कहीं क्या न हो जाए, है, कितनी परेशानी रहती है। इस समय जो गरीब है वो सबसे अच्छे है। क्यों सबसे अच्छे, क्यों बताए, कारण क्या? एक जो धन संपत्ति वाले होते हैं उनके दिमाग बहुत चढ़े हुए होते हैं, भगवान भगवान को नहीं मानते। तो जो भगवान भगवान मानते ही नहीं उनको भगवान मिलेगा कहाँ से, है? और दूसरी बात यह है, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत ऊंचे पदमान मर्तबे पर होते हैं, तो उनको अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो चाहे भी कि हम भगवान और भगवान के ज्ञान को सुन लें, समझ लें, लेकिन फिर भी उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो इस समय जो गरीब है वो सबसे अच्छे हैं। क्यों, क्यों भगवान भी जब इस सृष्टि पर आता है तो गरीबों को उठाता है या साहूकारों को उठाता है, वो तो गरीब निवाज है। तो गरीब निवाज भगवान आकर के गरीबों को उठा रहा है। बाप आते ही है गरीबों को साहूकार बनाने के लिए, दान भी गरीबों को देना होता है, हैं? दान भी विश्व की वास्ताई का दान बाप आवा देने है तो देगा किसको आगे, हैं? बेगर को देगा या जो जो पहले से ही साहूकार बना पड़ा उसको देगा? सभी साधारण है ना। बाकी जो लखपति है जैसे बिरला है, उनको करोड़ों रुपया है, कितना भी उनको समझाओ अपने धन की उनको मगरूरी बहुत बनी रहेगी, है? वो बाबा की ज्ञान की बातों का ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ तो सारे ही साधारण, कहाँ बाबा की ज्ञान में आने वाले, कोई देखे अरबपति खरबपति मल्टी मिलियनर, कोई नहीं। यहाँ तो सारे ही साधारण, और कोई असाधारण खुदा न खास का कोई निकल भी आए तो बाबा कहते पहले बनो बेगर। तो राजा ही लेनी है तो तुम पहले बेगर बनो, आओ लगाओ हमारी संग लगती। ये दुनिया में कहते हैं शंकर जी का भगत नहीं बनना चाहिए। शंकर जी का भगत बनेंगे तो शंकर जी हमको भी लगोटी लगाना सिखा देंगे। बाकी जो लखपति हैं जैसे बिरला है, करोड़ों रुपया है, कितना भी समझाओ अपने धन की बड़ी मगरूरी बनी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों धन देना है उनको, ये लखपति करोड़पति उनको थोड़ा ही मैं दान करूंगा आगे। मैं तो हूँ ही गरीब निवास, मैं तो गरीबों को आकर ध्यान देता हूँ। ऐसी कन्याएं माताएं ही लेती है इस दुनिया में, कली की दुनिया में सबसे जास्ती गरीब है कन्याएं माताएं, माताएं सबसे ज्यादा गरीब है, हैं? माताएं गरीब हैं, उन माताओं को मैं आकर के दान देता हूँ। कन्या का देखो कितना मान होता है, सब पूजते हैं, इसलिए मान होता है कन्या का, हैं? माताएं इसलिए गरीब है, उनके पास प्योरिटी की थोड़ी पावर थी शादी से पहले, वो भी चली गई, अब कुछ भी नहीं रहा। कन्याएं मान किस लिए होता है, कन्याओं के पास पवित्रता की पावर होती है, तो पवित्रता की पावर होती है तो सब पूजते हैं। शादी करने से ही फिर कन्या भी पुजारी बन जाती है, सबके पांव पूंछ छूने पड़ते हैं, भूल जाते हैं हम आधा कल पूजती थे, फिर पुजारी बने। कन्या तो बेचारी इसी जन्म में पुजारी बन जाती है, शादी की और इसी जन्म में सबके पांव छूने पड़ते हैं। कुमारी पावन होती है, शादी करने से पति पुजारी बन जाते हैं, पति को भी परमेश्वर समझा और माथा टेकने लग पड़ेगी, उनके आगे दासी होकर के बैठेगी। तो बाप आए इन सब दुखों से छुड़ाई देते हैं। बच्चे हैं वो वृद्धि को पाते जाते हैं, तुम समझा सकते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के औलाद हैं, शिव के पौत्र हैं, क्या हम बच्चे किसके हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के तो हम बच्चे हैं और शिव के, शिव हमारा दादी है। कहते हैं तुम्हारे बाप दादे ने कुछ देखा है, जानते हैं, तो दादा हमारा कौन है? शिव है हमारा दादा और प्रजापिता ब्रह्मा है हमारा बाबा। शिव के पुत्र है, उनकी मिल्कियत पर हमारा हिस्सा लगता है। उनकी मिल्कियत बेहद की है, हद की मिल्कियत नहीं है। क्या था हैं? ऐसे नहीं माउंट आबू मेहरबानियां अटारियां बन जाए, हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए तो उनके ऊपर हमारी तो मिल्कियत बन जाएगी, हमारा वर्षा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हैं? बड़े बड़े जोनल इंचार्ज बन जाएंगे या विदेश के इंचार्ज बन जाएंगे, स्वदेश के सेंटरों के इंचार्ज बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है? हद है कि बेहद? ये सब हद है। बाप तो आकर के बेहद की विश्व की बरसाई देते हैं। कैसी बेहद की विश्व की बरसाई? कि है कुछ भी नहीं, फिर भी मन और बुद्धि के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है कि हर तरीके से अपने को भरपूर समझते हैं। जो पाना था सो पा लिया, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है, बच्चे माँ में ही कम याद करो। मैं तो सच कहता हूँ, तुम नारी से लक्ष्मी बनेंगे। क्या कहा? झूठी बात नहीं कह रहा हूँ। क्या कैसे भी कोई ज्ञान होता है क्या कि नर को नारायण बना दे और नारी को लक्ष्मी बना दे? ये तो हमने सुना है कि डॉक्टर बन जाता है, मास्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, ये तो कभी सुना ही नहीं। बाबा कहते मैं सच बता रहा हूँ, मैं नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाने आया हुआ हूँ। इसमें कुछ भी व्रत नियम आदि करना, भूख मरना नहीं है। क्या भूख मरो ये भी कोई जरूरी नहीं है, नियम उपवास आदि करो ऐसा कुछ नहीं है। आगे से तुम व्रत रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे। क्या था है? समझते हैं व्रत नियम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे? वास्तव में सच्चा व्रत ये है। कौन सा असली सच्चा व्रत कौन सा है? हैं बता हैं हैं सच्चा व्रत है, हैं? वो तो खाना पीना छोड़ देते हैं, वो हद का खाना पीना छोड़ देते हैं। क्या जो हद का खाना पीना छोड़ देते हैं वो तो भगत भी छोड़ लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। जो बेहद का खाना पीना है वो है विकारों को छोड़ देना। तो विकारों को छोड़ना ये तुम ही कर पाते हैं और कोई नहीं कर पाते। वो तो हद से भूख मरते हैं। तुम बच्चों को भी यहाँ कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। क्या कहा? यहाँ ऐसे ज्ञान में चलने वाले बहुत हैं, उनको कुछ है, दिल की बात पूरी नहीं हुई, किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे कुछ दिन के लिए खाना पीना छोड़े। ब्राह्मण परिवार में भी छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई भूख मरने आदि की दरकार नहीं है। हाँ तुमको तो पावन बनने की हड़ताल करनी है, तुम्हें ये हड़ताल करनी है, हम सबको पावन बना दे, तुम्हारा धंधा ही है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, क्या कहा है? निर्जल कब रहा जाता है? हैं? निर्जल एकादशी होती है ना, कब होती है? हैं? भीमसेनी एकादशी कही जाती है, हैं? जब गंगा दशहरा होता है ना, तो गंगा दशहरा के बाद वाली जो एकादशी है, जो अभी 29 तारीख को आने वाली है, कब आने वाली है? 29 तारीख को आने वाली है, हाँ, वो निर्जला एकादशी कही जाती है। और एकादशी में इतना भारी बंधन नहीं, लेकिन उसके लिए कहते हैं पानी भी नहीं पीना है? है? पानी भी नहीं पीना माने बातचीत कुछ नहीं, बूंद भी नहीं पेट में जानी चाहिए। खाना पीना तो खाना वो खाना ना खाना तो दूर की बात। तो निर्जल आदि रहना, खाना ना खाना, इससे कुछ नहीं होता है क्या? तो निर्जला रहे, खाना छोड़ दे, इन बातों से कोई फायदा? फायदा नहीं है। फायदा अगर है तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से, फिर भी पवित्र रहने से फिर भी फायदा बहुत है। सिर्फ तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। जिनका पति मर गया है क्या? जिनका पति मर गया है वो तो और ही भाग्यशाली। लो पति मर जाता है, विधवा हो जाती है तो रोते हैं। बाबा कहते हैं जिनका पति मर जाए वो तो और ही ज्यादा भाग्यशाली। क्यों और ही ज्यादा भाग्यशाली क्यों हुए? है तो वो बंधन, हाँ वो बंधन डालता था अपवित्रता का, अब ये बंधन खलास हो जाता है। पति होता तो बहुत बंधन पड़ते हैं, समझाया जाता अच्छा हुआ वो मर गया। ये तो पतियों को पति तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माताओं को बहुत दुख होता है जब पति मर जाता है। क्या सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? बच्चों को होता है या माता को होता है? है माता को बहुत दुख होता है। उन्हों को भी जाए समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? उन माताओं को जिनका पति मर गया हो उनको भी जाके समझाना चाहिए। अरे तुम काहे के लिए रोती हो, अब तो पतियों का भी पति आया हुआ है। वो कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग की मालिक बन जाएंगे। ये तो पतियों का पति बापों का भी बाप है। क्या भगवान तो तुम्हारी पतियों का भी पति है, तुम्हारे बापों का भी बाप है, सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। तो कोई का पति मरे और वो यहाँ आ जाए तो यहाँ आकर के और खुशी में ताली बजावेगी। क्यों ताली बजावेगी? कि अच्छा हुआ, नहीं तो देख बिगर हमको तो छोड़ता ही नहीं। किसका पति मरे तो उनको भी जाकर के समझाना चाहिए। पुरुष तो झट झूठ दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी जूती खरीद अपने मस्ती मारते हैं। पुरुषों को कोई ऐसा कोई बंधन नहीं है, और स्त्रियों को तो उनका पति मर जाए तो सारी जिंदगी उनको विधवा बन के रहना पड़ता है। तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। अखबारों में तो पढ़ता है, समझाना चाहिए तुम रोती क्यों हो, सत्युग में कब रोते नहीं है, यहाँ तो रोते ही रहते हैं। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य दैवी राज्य था, अभी तो एक दो को मारते कूटते ही रहते हैं। हासुरी राज्य है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारी सेटिंग है। त्रिमूर्ति भी है, लक्ष्मी नारायण भी है, राधे कृष्ण भी है, क्या पूरा परिवार दिया हुआ। ये चित्र भी कोई रोज देखता रहे तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये बनाए रहे हैं। अगर ये बुद्धि में आता रहे, घर घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाए लिख दो, वेद के बाप को जानने से तुम 21 जन्म का वर्षा पा सकते हो, ऊंच पद पा सकते हो। 7-8-65 की वाणी का तीसरा पेज। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देख करके तुम्हारे पास आवेंगे। क्या कहा? एकदम नहीं आवेंगे बोर्ड लगाने के बाद, धीरे धीरे तुम्हारा बोर्ड देख करके बहुत तुम्हारे पास आवेंगे। तुम अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जनरी पास कर रहे हो तो बोर्ड लगाना पड़ेगा ना। बोलो, इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बात सही मिलेगी। है लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा दो और क्या बोलो, इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बात सही। लक्ष्मी नारायण के चित्र में कौन सा बाप बैठा हुआ है? अरे ऊपर त्रिमूर्ति का चित्र लगा है, उसमें शंकर जी का चित्र रखा हुआ, तो विष्णु का बाप है ना। और फिर सतयुग में नारायण बनेगा तो सतयुग में पहले बनेगा कि संगम की स्वर्ग में पहले बनेगा? संगम तो वहाँ भी तो बाप ही है ना। तो बोला बाप कितने रूहानी बच्चे होते हैं, बच्चरे वाले होते हैं ना, इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके कुमारियां हैं, कितने बच्चरे वाला हूँ, मैं रचना रच रहा हूँ ना, बच्चे वृद्धि को पा रहे हैं, तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। बाबा कहते हैं देह सहित सब झूठे संबंध छोड़, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। कब पावन बन जाओगे? हैं? तो अपनी देह को भी भूल जाओ, और जब देह को भूलेंगे तो देह के पदार्थों को भी भूलना पड़े। वे देह और देह के पदार्थ भूलेंगे, देह के संबंधी भूलेंगे, तो जरूर शिव बाबा याद आएगा, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये युक्ति बहुत अच्छी है। तुम अंजाम भी करते आए हो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। बुढ़िया भी सिर्फ दो अक्षर दान कर ले, क्या तो भी उनका बहुत कल्याण हो सकता है। मैं आत्मा और मेरा बाबा और बुढ़िया सब भूल जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि वैसे भी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनको गर्भस्थी में जीवन खपाते खपाते सारी बुद्धि तो खलास हो जाती है, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता तो है नहीं। तो बाबा ने कहा तुम ज्यादा याद मत करो, तुम क्या करो सिर्फ दो बातें याद करो, मैं आत्मा और मेरा बाप शिव बाबा इस सृष्टि पर आया हुआ है, हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं फिर देवता बनेंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। क्या अगर मनुष्य से देवता बनना है तो बीच में क्या बनना पड़े? ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ब्रह्मा की औलाद बनना पड़े, और बनेंगे भी जरूर, जो कल पहले बने होंगे वो ही बनेंगे, ढेर के ढेर बनेंगे। अभी तक ब्राह्मण बच्चे बाहर विलायत तक तरफ भी हैं, याद तो करते रहते हैं ना। बाप कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा का पोत्रा समझ, याद करते रहो। हम ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे, कलयुग में है मनुष्य, सतयुग में बनेंगे देवताएं, कलयुग में मनुष्य सभी आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं रहता जो आसुरी संप्रदाय न बना हुआ हो, दूसरों को दुख न देता हो। कलयुग में मनुष्य सभी आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं, अभी तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, और ये बनाने वाला एक ही बाप है, दूसरा कोई तो बतला ही नहीं सकते, इन ब्रह्म वर्णों को जानते ही नहीं। तुम ब्राह्मण ही ये नाली समझ सकते हो, तुमको जब तक बी के द्वारा ज्ञान न मिले तब तक तुम भी समझा नहीं सकते, तुम ही दे सकते हो ज्ञान। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए, साफ दिल पर मुराद हासिल होती है। कोई कोई का दिल साफ नहीं होता है, क्या होता मिल भी देंगे तो इधर की बात उधर की बात जो असली बात है वो छुपा दे। सच्चे दिल से सच्चे बाबा की सेवा में लग जाना चाहिए, हावी हो जानी चाहिए, हमारा काम है दूसरों को समझाना। ये भी जानते हो 100 से माथा मारेंगे तब कोई एक की बुद्धि में मुश्किल से बैठेगा, एक दो निकल आएंगे, जो कल पहले निकला होगा बीके बना होगा वो ही आवेगा। तो तुमको थकना नहीं है, तुम मेहनत करते रहो, कोई न कोई निकल पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधियों आदि पास जाओ, शादी मुरादी पर जाओ, वो फिर हरेक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि बाबा ने उनको तो शादी पे जाने की राय दे दी, हमको राय नहीं दी है, तो ये नहीं कहा जा सकता। हरेक को अलग अलग राय दी जाती है, हरेक के अपने अपने कर्म है, मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ खाना भी पड़ता है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं। क्या कहा? शादी मुरादी में जाने की सबको छुट्टी नहीं देते हैं, जिनको देखते हैं ये मजबूत है तो छुट्टी दे देते हैं, इनके ऊपर माया का असर हो जाएगा इसलिए छुट्टी नहीं देते। लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी ही छूट जाएगी। क्या नौकरी? कोई नौकरी कर रहा है और ऑफिस में कहीं पार्टी आर्टी हुई और वो पार्टी में नहीं गया, मान लो ऑफिसर का तबादला हुआ है, उसमें पार्टी लगी तो नहीं गया, تو پھر انہیں ہو سکتا ہے وہ آفیسر ناراض ہو کر کے نوکری سے ہی نکال دے. تو بولا بابا سب کو چھٹی نہیں دیتے ہیں, کئیوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. ایک کہانی بھی ہے, گرو نے چیلے کو کہا شیر کی گفا میں رہو. کیا گرو نے چیلے کو کیا کہا؟ شیر کی گفا میں رہو, رنڈی کے پاس رہو, پریکشا لینے بھیجا نا, تو ایسے نہیں کہ ایک طرف تو پڑھاتے ہیں کہ یہ پڑھائی پڑھو پوترتا کی, اور دوسری طرف ہم کو ایسی ایسی جگہ بھیج دیا. واسطے میں وہ کوئی پریکشا نہیں ہے. کیا کہ شیر کی گفا میں رہو جا کر, یا کوئی رنڈیا کے پاس بھیج دیا گرو جی نے, یہ کوئی پریکشا نہیں ہے. اس دنیا میں تو سارے ہی پتت بھرشٹاچاری ہے. یہ تم بچوں کے لیے ہے پریکشا, تم کو کوئی شیر کے پاس تھوڑے بھیجیں گے. باپ تو سمجھاتے ہیں کوئی بھی ہو ان کو باپ کا پرچے دیتے رہو, دن پرتی دن تالا کھلتا جائے گا, جھاڑ بھرتا تو ہے نا, تب پھر بناش بھی شروع ہو جائے گا. ان سے پہلے بناش ہو نہ سکے, یہاں تو راجدھانی استھاپن ہو رہی ہے, پہلے کیا استھاپن ہوگا؟ پہلے تو راجدھانی استھاپن ہوگی. راجدھانی جب استھاپن ہو جائے گی پھر بعد میں بناش شروع ہوگا. باپ کہتے ہیں صرف یاد کرو. وہ لوگ رام کو جانتے نہیں ہیں. جب جانتے ہی نہیں ہیں تو رام رام کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ چلو جانتے نہیں تو کم سے کم نام تو رٹ لیں, رام 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 ہے. ارے جانتے نہیں ہیں کہ تم رام رام رٹو گے لیکن رام نام کیوں پڑا, یہ بھی تو جاننا پڑے نا. تو رام نام رٹنے سے بھی فائدہ ہے, کیونکہ ہر ایک جو نام پڑتا ہے وہ کائے کے آدھار پر پڑتا ہے؟ کوئی نہ کوئی کام کیا ہے, اس کام کے آدھار پر نام پڑتا ہے. تو رام کا بھی نام کوئی کام کیا ہوگا نا. کیا کام کیا ہوگا؟ گٹ گٹ ترم رمتے رام رمیا, جو سب کے دلوں میں رمن کرتا ہے اس کا نام رام رکھ دیا. تو ایسے تو بہت گرو لوگ کہہ دیتے ہیں, رام رٹو, سو مالائیں پھیرو, یہ کرو, رومانچ کھڑے ہو جاتے ہیں. رام رام کہنے کا ان کو ابھیاس ہو جاتا ہے. قسم قسم کے ہوتے ہیں. بابا کا دیکھا ہوا ہے, چھوٹے پن سے گرو کیے ہوئے تھے. کرشن کا تو بھگت تھا. کون؟ برہما بابا. کس کا بھگت تھا؟ بچپن میں کرشن کا بھگت تھا, بہت گرو کیے تھے. مانا کرشن کی آتما بہت گرو کرتی ہے. کیا؟ اور اس کے مقابلے رام والی آتما, ایک شیو بابا دوسرا نگو اس کا ہے ایک لفظ کا پاٹھ. تو کرشن کی آتما نے بہت گرو کیے. اب باپ کہتے ہیں بچے ان سب کو چھوڑو, اب میں ست گرو ہوں. وہ گرو لوگ تو انیک پرکار کے ہوتے ہیں. میں تو ایک ہی ہوں سور کی بادشاہی دینے والا, اس لیے گایا جاتا ہے ست گرو کا سنگ تارے کسنگ بورے. اب تم کو تار رہے ہیں نا سورگ میں, تم جانتے ہو وہاں تم کو راجا ہی ملتی ہے. پتت پاون باپ آ کر سبھی کو پاون بنا کر لے جاتے ہیں. کیا پتت کو نہیں لے جائیں گے؟ کس کو لے جاتے ہیں؟ پتتوں کو پاون بنا کر کے پھر لے جاتے ہیں. باقی سب مکتی دھام میں شانتی دھام میں چلے جائیں. بار سکھ دھام تھا جب دیوی دیوتاؤں کا راج تھا, باقی سب شانتی دھام میں. تو اس سے میں آ کر کے سب کو مکتی جیون مکتی میں لے جاتا ہوں, پھر ایسے کیوں کہتے ہو کہ یوگ یوگ آتے ہیں؟ میں ہر یوگ میں, بابا نے پوچھا, میں تو ہر یوگ میں نہیں آتا ہوں, کلیوگ کے انت میں ہی آتا ہوں. پھر تم ایسے کیوں کہتے ہو کہ سمبھوا میں یوگ یوگ, گیتا میں کیوں ایسے مان لیا تم نے کہ میں ہر یوگ میں آتا ہوں؟ ستیگ میں ہرنا کشپ بن کے آتا ہوں, وہ ہرنا کشپ کو مارنے والا نرسنگ اوتار بن کے آتا ہوں, یا نارائن بن کے آتا ہوں, تریتا میں رام بن کے آتا ہوں, دواپر میں کرشن بن کے آتا ہوں, کلیوگ میں کلنکی دھر بن کے آتا ہوں. ہر یوگ میں آنے کی میرے کو کیا درکار ہے؟ क्यों समझते हो कि मैं हरी में आता हूँ? क्या कारण हुआ? आता तो कलयुग के अंत में ही है, संगम में ही आता है, लेकिन जब आता है तो चारों युगों की शूटिंग रिहर्सल कराता है। तो चारों युगों की जो रिहर्सल होती है, और हर युग की रिहर्सल में अंत में वो भगवान बाप बन करके बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। किसी को उन्होंने समझ लिया कि संभवामी हर युग में आता है हर युग की शूटिंग में, और उन्होंने क्या मान लिया, हर युग में आता है। अब मैं ये युग युग आकर क्या करूंगा? सबका सतगति दाता एक ही बात है, बाकी वो कलयुग गुरु तो अनेक है, सतयुग में गुरु की गर्दी, गुरु की दरकार ही नहीं है। ये कलयुगी गुरु तो सबको डुबोते रहते हैं। 7-8-65 की वाणी का चौथा पेज, अभी समझाया तो बहुत जाता है, अभी बच्चों को समझाया तो बहुत जाता है, लेकिन बच्चों की बुद्धि में नंबर वार बैठता है। ऐसा क्यों है? बच्चों को इतना समझाया जाता है लेकिन नंबर वार क्यों बैठता है? क्योंकि 63 जन्मों में जैसे जैसे अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसी अनुसार बुद्धि बन जाती है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनकी बुद्धि भी आखिरी जन्म में अच्छी बन जाती है, ज्यादा उनको धारणा हो जाती है, और जिन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा, बूढ़ियों का भी कल्याण करना है। हाँ, तो बुढ़िया इकट्ठी हो गई, बुढ़ियों का भी कल्याण करना है, समझाना है। हम आत्माओं का वो बाप ऊंच से ऊंच बाप है, उनको याद करो। अगर याद नहीं करते हैं तो समझो उनकी तकदीर में ही नहीं है। किनकी? बूढ़ी माताएं बूढ़ी होकर के भी सारी दुनिया देहदारी देख ली, और उसके बाद भी अगर बाप को याद नहीं किया तो उनकी बुद्धि में है, वो क्या नाम, तकदीर में है ही नहीं। किस धर्म में आने वाला होगा तो जरूर समझेगा, ना आने वाला होगा तो नहीं समझेगा। मेहनत तुम बच्चों को बहुत करनी है। बाबा अभी मेहनत करते रहते हैं, शांति धाम छोड़कर आते हैं, पति दुनिया पति शरीर में आते हैं, और सबसे बातचीत करते रहते हैं, अछूत से भी बात करनी पड़ती है। ये नाम तो छोटा है ना, मैतरों का तो धंधा ही है, ये सेवा और कोई कर ही नहीं सकता सिवाय मेहतरों के, इसलिए अछूतों को मान देते हैं। ये तो तुम्हारी बहुत सेवा कर, बाप कहते हैं, बाप भी कहते हैं, अबलाओ भीलनियों आदि को मैंने समझाया है, उद्धार किया है। क्या रामायण में किसका गायन है? भीलनी का गायन है ना, तो भीलनी का आकर के उद्धार करता हूँ। इतनी सर्विस और कोई कर ही नहीं सकते, इतनी सर्विस मेरे नहीं कर सकती है, नहीं सर्विस और कोई कर नहीं सकते। पुराने तो देखो थक गए, भूलता नहीं है, ब्लड नहीं, गवर्नमेंट कहती है क्या ब्लड चाहिए, हम भी कहते हैं नई नई बच्चियां ऐसे ऐसे काम करें, कमाल करके दिखा दें, ऐसे भी जरूर निकलेंगे जो गणिकाओं के पास जाएंगे। क्या ऐसे ऐसे पावरफुल बच्चे निकलेंगे तो गणिकाओं के पास जाएंगे और गणिकाओं को भी उठा देंगे, वैश्याओं को भी उठा करके वैश्यावृत्ति छुड़ा करके सेवा ले लायक बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।